ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 टेक्स्ट Reading from Bhagavad Gita as it is, chapter 8, attaining the supreme text 5. Antakale cha mameva smaran mukta kalevaram yah prayati samadbhavam yati nastyatra samshayah. Translation and purport by Srila Prabhupada. And whoever at the end of his life quits his body remembering me alone at once attains my nature. Of this there is no doubt. Purport. In this verse, the importance of Krishna consciousness is stressed. Anyone who quits his body in Krishna consciousness is at once transferred to the transcendental nature of the Supreme Lord. The Supreme Lord is the purest of the pure. Therefore, anyone who is constantly Krishna conscious is also the purest of the pure. The word is smaran, remembering, is important. Remembrance of Krishna is not possible for the impure soul who has not practiced Krishna consciousness in devotional service. Therefore, one should practice Krishna consciousness from the very beginning of life. If one wants to achieve success at the end of his life, the process of remembering Krishna is essential. Therefore, one should constantly, incessantly chant the Maha Mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lord Chaitanya has advised that one be as tolerant as a tree, taro riva saheshnuna. There may be so many impediments for a person who is chanting Hare Krishna. Nonetheless, tolerating all these impediments, one should continue to chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So that at the end of one's life, one can have the full benefit of Krishna consciousness. ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जो भी हम जीवन में करेंगे उसकी परीक्षा होगी मरण के समय में, क्योंकि जो भी हम जीवन भर करेंगे उसके अनुसार जो हमारी अंत समय में चेतना बनेगी उसी के अनुसार हमारी आगे गति होगी। तो हम जानते हैं भगवद गीता से कि प्राप्य परम गति मनुष्य की है कृष्ण प्रेम। इसीलिए अंत में अंते नारायण स्मृति, ये परीक्षा में पासिंग मार्क्स है। अंत में नारायण की स्मृति होगी यदि ये शरीर को त्यागने के समय में। अंत काले च माम एव स्मरण, भगवान यहां कह रहे हैं कि जो केवल मेरा स्मरण करते हुए इस देह को त्यागता है वो मुझे प्राप्त करता है। तो ये हमारी परीक्षा का पासिंग मार्क्स है, नारायण स्मृति। तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारी उस परीक्षा में नारायण की स्मृति हमारी हो। तो अभी कोई सोच सकता है तो ठीक है, अंत समय में कर लेंगे हम नारायण की स्मृति, और अभी इस भौतिक जगत में एंजॉय भी कर लेते हैं, दोनों चीज साथ साथ चला सकते हैं। अक्सर हमारा मन ऐसा ही करता है कि दोनों चीजें नहीं हो सकती, भौतिक जगत को भी एंजॉय करें और फिर भगवत धाम में चले जाएं, भगवान के साथ में प्रेम भी प्राप्त करें। लेकिन ये दोनों चीज साथ साथ संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण की सेवा, कृष्ण का सानिध्य, वो केवल अति शुद्ध आत्मा के लिए ही संभव है, क्योंकि भगवान परम शुद्ध है। पवित्रम परमम भवान, अर्जुन भगवद्गीता में उद्घोषणा करते हैं कि भगवान आप परम पवित्र हैं। माया भगवान की परछाई की तरह से हमेशा उनसे पीछे रहती है, कभी उनके सामने भी नहीं आती। इसलिए भगवान कभी भी अज्ञानता से आच्छादित नहीं हो सकते, इसलिए हमेशा से परम पवित्र है। हमारी जो वर्तमान स्थिति है, डोंट शेक द लाइट्स, हमारी जो वर्तमान स्थिति है उसमें हम अभी माया के वशीभूत हैं, यानी कि हम अपवित्र हैं। हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं, माया के वशीभूत होना वो हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं, अस्वाभाविक स्थिति, इसलिए वो प्रदूषण की स्थिति है। तो ऐसी प्रदूषण की स्थिति में हम पूर्ण रूप से भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, भगवान की सेवा पूर्ण रूप से नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान परम पवित्र हैं और खुद पवित्र हुए बिना हम पूर्ण रूप से भगवान की सेवा नहीं कर सकते। तो इसलिए परफेक्टली भगवान की जो सेवा करना है, सेवा के अंदर सब कुछ आ गया, भगवान का स्मरण करना, श्रवण स्मरण कीर्तन शुद्ध रूप से करने के लिए जरूरी है कि हम भी पवित्र हों। लेकिन अभी शुरुआत फिर कहां से हो, पूर्ण पवित्र हुए बिना हम भगवान की पूर्ण सेवा नहीं कर सकते, और पूर्ण सेवा किए बिना हम पूर्ण पवित्र हो नहीं सकते। सो स्टार्ट कहां से हो, चिकन एग, पहले कौन, ऐसी कुछ परिस्थिति होगी। तो इसलिए भगवान ने हमको साधन विधि दी, साधन विधि अर्थात जिसमें हम पूर्ण पवित्र नहीं है, अशुद्ध है अभी, लेकिन अगर हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, यानी कि दृढ़ इच्छा कि हमें अभी शुद्ध होना है, तो फिर हम उस अवस्था में उस चेतना के कारण, वो जो श्रद्धा है उसके कारण जो हम प्रयास करते हैं शास्त्र के अनुसार, गुरुजनों के अनुसार भगवान की सेवा करने का, भगवान उसको कृपावश स्वीकार करते हैं। हालांकि वो पूर्ण शुद्ध नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी अभी प्रबल इच्छा है, इच्छा है भगवान को प्रसन्न करने की, उस तरफ चलने की, इसलिए भगवान उसको कृपावश स्वीकार करते हैं। हालांकि वो शुद्ध नहीं है, लेकिन भगवान उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि भावग्राही जनार्दन, भगवान भावना देख रहे हैं कि यह अभी शुद्ध होना चाहता है। इसलिए उस अवस्था में प्रयास करने से, हालांकि पूर्ण शुद्ध चेतना में हम अभी नहीं है, लेकिन वो जो हमारे प्रयास होते हैं इंद्रियों से भगवान की सेवा करने के, वो हमको शुद्ध करते हैं, क्योंकि वो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए तो इसलिए भक्ति साधना अनुशीलन करने से हम ऐसी स्थिति को प्राप्त करेंगे जब स्वाभाविक रूप से हम भगवान की श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि रूप में भगवान की सेवा कर पाएंगे, शुद्ध रूप में, पूर्ण रूप में। तो ये साधना करने से जब अंत समय में हमारा स्मरण भगवान का हो पाएगा, क्योंकि अंत समय में स्मरण करना भगवान का वो आसान नहीं है, उसके लिए एक स्तर की शुद्धि चाहिए, एक स्तर की शुद्धि चाहिए, क्योंकि अंत समय में ये भौतिक शरीर का जो लगाव है और ये भौतिक जगत से जो लगाव है, अगर ये लगाव तब तक कायम रहा तो फिर भगवान का स्मरण नहीं होगा। लगाव मतलब गंदगी, भौतिक जगत से लगाव मतलब गंदगी, तो फिर भगवान का स्मरण नहीं होगा, क्योंकि वो समय में ये सारा जगत छोड़ने के समय वो लगाव के कारण हमारी चेतना वो इसी भौतिक जगत में ही रहेगी, उसी के चिंतन में रहेगी, क्योंकि जब छोड़ना होता है तब जिस चीज से लगाव होता है उसका स्मरण आता है। तो अंतिम समय में जिस चीज से भी ये पूरे भौतिक जगत से हमको छोड़ भी जाना है, तो यदि हमारा इस भौतिक जगत के प्रति लगाव रह गया तो फिर स्वाभाविक रूप से हमें इसी जगत के ही याद आएगा, फिर भगवान का स्मरण नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि भगवान का स्मरण करना किस अनुपात में भगवान का स्मरण कर पाएंगे, जिस अनुपात में हमारी शुद्धि होगी उस अनुपात में भगवान का स्मरण कर पाएंगे। ये स्मरण करना इस विज्ञान के ऊपर आधारित है, दिस इज द प्रिंसिपल। अभी हम देखते हैं कि हमारे लिए अविचलित हुए भगवान का स्मरण करना बड़ा मुश्किल होता है, हमारा स्मरण बार बार इंटरप्ट होता है कि नहीं होता है। जैसे कहीं आप खुले स्थान में कुकिंग करें, रसोई बनाएं, तो जो हवा चल रही है थी, तो जो अग्नि है वो बार 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 इधर उधर चलती रहती है, बर्तन पे लगने की जगह ऐसे ऐसे चलती रहती है, करेक्ट। या एक और उदाहरण है, तो जैसे कि एक दीपक की लो है, अगर आप उसको ऐसे स्थान पे रखेंगे जहां पर हवा नहीं चल रही है तो वो एक जैसी उसकी शेप मेंटेन रहती है, लेकिन अगर उसको आप ऐसे स्थान पर रख देंगे हवा चल रही है तो हिलती रहती है, फ्लिकरिंग। तो इस समय में जो हमारा भगवान का स्मरण है वो कैसा है, जैसे कि दीपक ऐसे स्थान पर रखा है जहां पर की हवा चल रही है, इस प्रकार से। तो हमारा स्मरण जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो जो फ्लेम है वो कांस्टेंट फ्लेम नहीं है, कभी बढ़ती है कभी कम होती है, चेंज होती रहती है उसकी फॉर्म, कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट फ्लेम नहीं, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमारा जो स्मरण है वो कांस्टेंट नहीं, इंटरप्टेड है। क्यों इंटरप्टेड है, ये क्या दिखाता है? अगर हमारा स्मरण कांस्टेंट नहीं है, इंटरप्टेड है, तो क्या दिखाता है ये सिम्टम किसका है, कि हमारे अंदर हृदय में अशुद्धि है, ये दिखाता है। आर्टिफिशियली कभी भी कोई भी भगवान का स्मरण नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल। उसका विज्ञान ये है, हृदय से उसका संबंध है, हृदय की दशा, इससे श्रवण दशा, स्मरण दशा, अलग अलग दशा है, स्तर है चेतना की, शुद्धि के। तो जिसकी चेतना अशुद्ध है वो उतना ही कम भगवान का स्मरण कर पाएगा। स्मरण तो छोड़िए, वो भगवान का नाम भी नहीं ले पाएगा। स्मरण से पहले क्या आता है, श्रवण और कीर्तन, उसके आधार पर उससे शुद्धि होती है, उससे फिर एक शुद्धि होने पर फिर हम स्मरण कर पाते हैं। तो जो बहुत अशुद्ध है, बहुत अधिक पापी है, वो भगवान का श्रवण भी नहीं कर पाते, उनको श्रवण करने से एलर्जी होती है। अगर कहीं वो निमंत्रण मिले कि आइए कोई भगवान के बारे में सुनिए, तो उनको बहुत ही अंदर से क्रोध आता है, क्या भगवान के बारे में, दे आर अगेंस्ट इट। क्यों, इससे क्या दिख रहा है, उसकी अशुद्धि बहुत ज्यादा है, ये दिख रहा है उसके हृदय के अंदर पाप कर्मों का फल बहुत ज्यादा है, इसलिए वो भगवान के प्रति सुनने में भी उसकी श्रद्धा नहीं है और बल्कि विरोध है। ये दिखा रहा है कि उसके हृदय के अंदर कर्मश बहुत ज्यादा है, उसके पाप कर्म का फल बहुत ज्यादा है। तो जिसके पाप कर्मों के फल कम हैं या पुण्य ज्यादा हैं, तो वो सामान्य रूप से भगवान के विषय में सुनने के लिए अधिक तैयार होगा, उत्सुक होगा, तो श्रवण। और ऐसा श्रवण करने से फिर धीरे धीरे वो कीर्तन करने के लिए तैयार होगा। श्रवण करने के बाद में फिर हम कीर्तन करने के लिए उपयुक्त होते हैं, योग्य बनते हैं, और फिर श्रवण और कीर्तन के बल पे स्मरण होता है वो, और उसके लिए अधिक शुद्धता चाहिए स्मरण करने के लिए। इसलिए पहले श्रवण कीर्तन करने से शुद्धि होगी, फिर धीरे धीरे स्मरण बढ़ेगा, और ये हम साथ साथ करते रहेंगे, श्रवण कीर्तन करते रहेंगे, स्मरण करने का प्रयास करते रहेंगे, और उस प्रकार से जैसे शुद्धि होगी वैसे वैसे ये क्रियाएं हम और अच्छे अच्छे से कर पाएंगे। तो इसलिए यहां श्री प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि हमें जब से हम होश संभालें, कौमारम आचरित प्राज्ञा, कौमार अवस्था से हमें, माता पिता को चाहिए कि कौमार अवस्था से ऐसा आयोजन करें कि बच्चे जो हैं, कौमार अवस्था क्या, बच्चे गर्भ अवस्था से ही, लेकिन कौमार अवस्था से हमें अपने आप एफर्ट्स भी शुरू कर देने चाहिए, कौमारम आचरित प्राज्ञा, कि हम भगवान के विषय में श्रवण करना प्रारंभ करें, ठीक है। तो फिर ये लाइफ की प्रिपरेशन, अंतिम परीक्षा की तैयारी शुरू होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम श्रवण करेंगे वैसे वैसे हमारा हृदय शुद्ध होगा। तो इसलिए ये भगवत शिक्षा वो 5 साल की आयु से देने का प्रावधान है, श्रवण करने का। हम मतलब 5 साल की आयु से बच्चा श्रवण कर पाए ऐसा आयोजन होना चाहिए समाज के अंदर, तो वो तैयारी शुरू होगी उसकी। अभी जैसे आप देखते हैं धीरे लोग जो हैं वो IIT की प्रिपरेशन जो है और जल्दी भी शुरू कर देते हैं। हमारे समय में हम लोग जब थे तो 12वीं, हमारे से पहले और कुछ साल पहले, तो 12वीं कक्षा के बाद ही ये ऐसा कोई अलग से तैयारी होती नहीं थी, अलग से ऐसे कोचिंग वगैरह कुछ नहीं होता था, केवल 12वीं कक्षा देते थे, उसके बाद में एंट्रेंस एग्जाम होते थे। फिर धीरे 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 कॉम्पिटिशन बढ़ गया तो उसके बाद में अभी कोचिंग शुरू हुई, तो फिर 10वीं कक्षा के बाद से कोचिंग शुरू होती थी, 10वीं 11वीं के लिए 12वीं 2 साल ऐसा कुछ करते थे। और बहुत से लोग तो उसको करते ही नहीं थे, केवल 12वीं के बाद में करते थे। तो अभी वो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे हम लोग तैयारी और जल्दी शुरू कर रहे हैं उसकी, है ना। अभी 8वीं कक्षा में भी शुरू कर देते हैं, है ना, शुरू करते हैं। तो फिर एक दिन आएगा गर्भदान संस्कार के टाइम पे स्पेशल संस्कार होगा, IIT संस्कार। तो उसकी ज्यादा महत्व लोग सोच रहे, अरे IIT में जाना बहुत महत्वपूर्ण है, जल्दी जल्दी शुरू करो। तो जब हम ये समझेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवान का स्मरण हो, तो फिर इसलिए जल्दी से जल्दी वो शुरू होना चाहिए, जब से उपयुक्त है हमारी चेतना उसको सुनने के लिए समझने के लिए, तब से वो शिक्षा शुरू होनी चाहिए। इसलिए कौमार आचरण पर एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। 5 साल आयु हुई, तैयार हो गया, स्टार्ट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना उस परीक्षा को उत्तीर्ण करना। कितने अटेम्प्ट है IIT? कोई अटेम्प्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट फिक्स नहीं है ना,
दो
है ना। और मनुष्य जीवन का तो अटेम्प्ट एक ही है, वो भी उसके बाद दोबारा करोड़ों करोड़ों जन्मों में जाने के बाद में ये एक ही अटेम्प्ट मिला है, ठीक है। इसमें पास और फेल हुए तो सीधा बहुत लंबा चक्कर है, ठीक है। तो बहुत रेयर है, ये एक ही अटेम्प्ट है हमारे पास, इसलिए एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। शास्त्रों में ये रुझान है, इसलिए 5 साल का हुए वहीं से शिक्षा शुरू होनी चाहिए, वहीं से बालकों को हरे कृष्ण ध्वनि सुननी चाहिए, और ये सब भगवान की तरफ से उनका ध्यान बटोरने वाली चीजें उनको नहीं सुनानी चाहिए। असत्संग नहीं देना है, सत्संग ही देना है, ऐसा होना चाहिए। तो चलिए, हम 5 साल की उम्र तो भी हमारी चुक गई, अभी हम लोग 20-22-21 साल में हैं। तो अभी आपके हाथ में है आपका जीवन, क्योंकि अभी आप युवा अवस्था में आप एंटर हो रहे हैं, इसलिए अभी आपको स्वतंत्रता है। अभी तक विवशताएं थी, स्वतंत्रता नहीं थी, अभी आपकी स्वतंत्रता है। तो अभी आपके ऊपर आप निर्णय लीजिए, आपको क्या श्रवण करना है, आपको क्या शिक्षा लेनी है, ठीक है। परीक्षा तो टाइम तो वही है, शुरू हो गया, परीक्षा तो उसी टाइम पे होगी, है ना। हम लोग लेट एंटर हुए हैं लेकिन तो हमें और ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, करेक्ट। तो इसलिए हमारी पूरी जीवन ऐसे मोल्ड होना चाहिए कि हम सत्संग में रह सके, और सत्संग के अंदर रहते हुए, भक्तों के संग में रहते हुए हम अधिक से अधिक श्रवण कीर्तन कर सकें, जिससे कि अधिक से अधिक हम स्मरण कर सकें, जिससे कि अंत समय में जो परीक्षा आएगी तब हम भगवान का स्मरण कर पाएं। और अगर भगवान का स्मरण कर पाएंगे तो फिर पास हो जाएंगे, ये दुर्लभ मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। भगवान भगवत धाम, भगवान की शुद्ध सेवा में नियुक्त हो पाएंगे। तो इसलिए इतनी ये महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है। और ये तो इसके लिए ये जो अभ्यास है ये बड़ी प्रबलता से अभ्यास होना चाहिए, श्रवण कीर्तन करने का अभ्यास बड़े अच्छे से होना चाहिए। बहुत शरीर के लिए जितना जरूरी है उतना कार्य करें, वो कार्य भी इस प्रकार से करें जिससे कि अनुकूल हो भगवत सेवा है, और अधिक से अधिक समय श्रवण कीर्तन के लगाना चाहिए। ये इस प्रकार से अपनी लाइफ को मोल्ड करना है, हाउ टू गेट मोर एंड मोर टाइम फॉर द प्राइमरी थिंग, कहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं आ जाए, है ना। IIT की तैयारी करने चले हैं, कोचिंग कर रहे हैं वहां पर, कुछ डिस्ट्रैक्शन आ गया, कुछ लव अफेयर हो गया, हो गई तैयारी चौपट, ऐसा होता है ना बहुत लोगों का, तो डिस्ट्रैक्शंस नहीं आ जाने चाहिए। तो उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में माया हमेशा आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, बहुत सारे प्रलोभन हैं ये तो वो प्रलोभनों में नहीं आकर के हमें एक चित्त होकर के अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को ध्यान रखते हुए अपने जीवन को इस प्रकार से जीना है। और ये श्रवण कीर्तन करने के लिए किस प्रकार के मनोभाव की आवश्यकता पड़ेगी वो चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, तृणाद अपि सुनिचेना तरोर अपि सहीषुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। सदा हरि का कीर्तन करने के लिए ये चार चीजें, ये चार प्रकार का एटीट्यूड जरूरी है, तभी हम सतत रूप से श्रवण कीर्तन कर पाएंगे। उसमें से तृणाद अपि सुनिचेना, तृण से भी अधिक अपने को नीच समझना, तरोर इव सहिष्णु पेड़ से भी अपने को अधिक सहिष्णु, अमानिना अपने मान सम्मान की इच्छा नहीं करना और दूसरों को हमेशा यथोचित मान सम्मान देने के लिए तैयार रहना। ये चार चीजें करने से हम ये उपयुक्त मानसिक स्थिति उत्पन्न होगी जिससे हम सतत भगवान का श्रवण कीर्तन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि श्रवण कीर्तन करना है मतलब भगवान से प्रार्थना, श्रवण करना विशेष रूप से हरे कृष्ण मंत्र जो हम लेते हैं तो उसका अर्थ है प्रार्थना, भगवान हमें आपकी सेवा करनी। तो तृणादपि सुनिचेना, मैं तृण से भी अधिक तुच्छ हूं, यानी कि मैं भोक्ता नहीं हूं, मैं सेवक हूं, मैं आई एम जस्ट अ मीनियल सर्वेंट, नथिंग एल्स। तो तृण स्ट्रॉ इन द स्ट्रीट, तो वो सबसे निम्न अवस्था है। तो ऐसे हमारे हम बहुत तुच्छ हैं, जब हम ये समझेंगे तो भोग करने की इच्छा नहीं होगी, केवल सेवा करने की इच्छा होगी। क्योंकि जब हम अपने को बड़ा समझते हैं तब हम बड़ा मतलब हम भोगता है, हम तुच्छ हैं तो हम सेवा करने के लिए अधिकारी हैं। तो इसलिए वो ये भावना कि हम तुच्छ जीव हैं ये इस बात के लिए मदद करता है समझने के लिए कि हम सेवक हैं। तो जब सेवक हैं तो फिर प्रार्थना करने में रुचि आएगी कि भगवान हमें आपकी सेवा करनी, हम सेवक हैं, हम आपकी सेवा, तो हम प्रार्थना कर पाएंगे अच्छे से। अभी हम क्यों प्रार्थना नहीं कर पाते, क्यों हमारे कृष्ण जप नहीं कर पाते, क्योंकि हमें अंदर सेवा की रुचि नहीं है और सेवा करने के लिए भी, सेवा प्राप्त करने के लिए भी रुचि नहीं है, इसलिए हमें चैंटिंग नहीं कर पाते, हम प्रार्थना नहीं कर पाते। जिस चीज को प्राप्त करने की इच्छा हो तो ही तो हम उसी अनुसार एफर्ट्स या प्रार्थना कर पाएंगे। अभी हमारे अंदर सेवा करने की रुचि नहीं, इसलिए प्रार्थना भी हमारी नहीं होता हो पाती। एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोलते हरे कृष्ण कृष्ण, फिर मन के रह जाता है, क्योंकि प्रार्थना करने की इच्छा नहीं, क्योंकि हमें वो गंतव्य है कि हमें सेवक बनना है, उसके प्रति इतना हमारी अनुत्साह नहीं है, भोग करने के प्रति उत्साह है। इसलिए तो इसे तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णु, दूसरा है वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बनना पड़ेगा, क्योंकि एक तो हमारी इंद्रिय भोग में बहुत सारे विघ्न तो आएंगे इस भौतिक जगत में, जब हमें बहुत सारे कष्ट आएंगे, कष्ट का मतलब क्या है, इंद्रिय के लिए समस्या, इंद्रिय भोग में समस्या, इंद्रियों के लिए कुछ प्रतिकूल वातावरण, उसको हम कष्ट कहते हैं, करेक्ट, मानसिक स्तर पे हो के शारीरिक स्तर पे हो, तो वो तो इस भौतिक जगत में बहुत सारे आएंगे। तो अगर हम नहीं समझ रहे हैं कि प्राथमिक रूप से हमें तो सेवा करनी है, अगर हम सोच रहे हैं मुझे भोग भी करना है, तो जैसे ही भोग में रुकावट आएगी तो हम परेशान हो जाएंगे, मतलब फिर उत्साह नहीं रहेगा जब करने का, जो भी कुछ करने का। तो इसलिए वृक्ष के समान सहिष्णु बनना होगा, यानी कि ये जो भी भौतिक समस्या है, इंद्रियों के लिए जो भी कष्ट है उसको सहन करना है, क्योंकि मैं भोक्ता नहीं हूं और भौतिक जगत में इंद्रियों का स्वभाव ही है कि मुझे कष्ट आएगा, इसलिए उसकी परवाह नहीं करना है, उसको टॉलरेट करना है। अभी आसक्ति होने के कारण हम अपने को सही मानने से उससे कष्ट अनुभव होगा जब तक इस भौतिक जगत में है, लेकिन ये बुद्धि से समझते हुए कि ये कष्ट शरीर के लिए है और मैं तो भोक्ता नहीं हूं, इसलिए उसकी वजह से कष्ट की वजह से मैं सेवा कैसे रोकूंगा, क्योंकि मैं भोक्ता हूं नहीं। एक सेवक जो है वो स्वामी की सेवा करने के लिए चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो तो करते ही जाता है ना सेवा, अपने कष्ट की चिंता नहीं करता है। तो उसी प्रकार से हमें भगवान की सेवा करनी है चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जो मेरे हाथ में नहीं है, जो मेरे हाथ में उसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि अनुकूल चॉइस चूज करूं, जो मेरे हाथ में नहीं है, तो जैसी भी है उसमें मैं सेवा करता ही जाऊंगा, उससे मैं विचलित नहीं होऊंगा कष्ट आने से या सुख आने से। ठीक है, तो इसलिए तरोर अपनी सृष्टि, जैसे पेड़ होता है वो उसको काटता भी है तो भी वो छाया देता रहता है ना, तो उसी प्रकार से हमें भगवान की सेवा करते रहना है, चाहे कितना भी सुख आए चाहे कितने भी दुख आए। सुख में भी भगवान को नहीं भूलना है और दुख में भी भगवान की सेवा नहीं भूलनी, दोनों स्थिति में। तो उसके लिए सहिष्णुता बहुत जरूरी होगी। और दूसरा, विशेष रूप से माया हमारी परीक्षा लेगी। जो भी भगवान की शरण के लिए तरफ प्रयास करेगा उसको तो और विशेष भगवान माया जो है भगवान के प्रतिनिधित्व की तरह से प्रतिनिधित्व करते हुए उसको और अधिक विचलित करने का प्रयास करेगी, उसको परीक्षा लेनी पड़ेगी कि तुम क्या चाहते हो, इंद्रिय भोग चाहते हो कि सेवा चाहते हो वास्तव में। तो कष्ट देने से अगर विचलित हो गए मतलब हम क्या चाहते हैं, प्राथमिक रूप से इंद्रिय भोग चाहते हैं, सेवा नहीं चाहते। क्योंकि अगर हम विचलित हो गए तो इसका मतलब हम सेवा करने के लिए उत्साही नहीं है। हमारा प्राइमरी गोल है सेवा करेंगे तब तक जब तक अपना इंद्रिय भोग होगा तब तक। लेकिन अगर हम चाहे कितना भी इंद्रिय कष्ट में हो हम अपना भरसक प्रयास जो है सेवा का नहीं छोड़ते हैं, तो फिर वो इसका इंडिकेशन है कि रियली वी आर सिंसियर टू सर्व। तो इसलिए माया ऐसी परीक्षा होती है, बहुत परीक्षा है, विशेष रूप से जो भगवान की शरण में जान जाएंगे उनकी शरण, उनकी शरणागति की परीक्षा होगी। उनको ऐसे बहुत सारे विचलन आएंगे, बहुत सारे अवरोध आएंगे उनके मन से, उनके शरीर से, अन्य लोगों से। तो जो उस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, जिसने ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए मैं भगवान की सेवा करना नहीं छोड़ूंगा, जितना मैं कर सकता हूं उतना नहीं छोड़ूंगा, जितना ही मैं कर पाऊं, तो वो व्यक्ति उत्तीर्ण हो जाएगा परीक्षा में। और जो समस्या आने पर या अधिक सुख आने पर विचलित हो गया, गया फेल, सो ऑल ऑफ अस हैव टू गो थ्रू दिस एग्जाम्स, सो मेनी एग्जाम्स। हरिदास ठाकुर, उनको सेवा करने के कारण पीटा गया, नाम लेने के कारण पीटा गया। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें आएंगी, हमारे भगवान की सेवा करने के कारण, हमारे समाज, माता पिता अगर अज्ञानी है तो माया के एजेंट बने हुए तो वो भी बहुत अवरोध करेंगे, बहुत रोष प्रकट करेंगे, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकश्यप तो उसको मारने के लिए तैयार हो गए थे, सो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग। सो आप ये सब अवरोध होने पर आप क्या, कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या आप दृढ़ बने रहेंगे हम लोग, उस पर यह निर्भर करेगा कि हम आगे बढ़ पाएंगे या अटक जाएंगे। ठीक है, इसलिए तरोर अपनी सहिष्णुता, इसलिए सहिष्णुता का भाव होना बहुत जरूरी है। सहन करते हुए अपना काम करते रहना, सहन करते रहना और बढ़ते जाना, सेवा करते रहना। हरे कृष्ण।
कोई व्यक्ति जैसे गीता में बता रहे हैं कि अंतिम समय पर अगर वो शरणागत हो जाता है भगवान, तो भगवान के पास चला जाता, तो जो उसका जो पिछले जीवन जितना भी जो भी किया वो प्रभाव नहीं डालता उसके ऊपर।
अगर वो पूर्ण शरणागत हो जाता है तो जैसे भगवान बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अगर वो पूर्ण शरणागत हो जाता है तो पूर्ण शरणागति जिस भी क्षण वो ले लेता है तो उस क्षण उसके सभी पाप खत्म हो जाते हैं। लेकिन सामान्यतया शरणागति पूर्ण होने के लिए अनुशीलन करना पड़ता है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए समय चाहिए। सामान्यतया सैद्धांतिक रूप से संभव है कि कोई एक क्षण में भी पूर्ण शरणागत हो जाए, सैद्धांतिक रूप से संभव है। लेकिन व्यावहारिक रूप से हमारी जो भोग वासनाएं अनर्थ इतने ज्यादा गहरे होते हैं कि वो खत्म होने में समय लगता है। इसलिए हमें पूरा जितना समय भी हमारे पास है उतना लगाना चाहिए उस शरणागति की स्थिति को प्राप्त करने के लिए। और अगर कोई ये भावना से पोस्टपोन करता है शरणागति को कि ठीक है वो तो एक क्षण में बताती है तो मैं लास्ट में कर लूंगा, तो इसका मतलब उसकी भावना शरणागति की है ही नहीं, वो तो केवल ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। तो शरणागति अगर गंभीरता है तो ठीक है मैं तो ऑल लेट हो गया, आज से शुरू करता हूँ, ऐसा नहीं कि अरे चलो बाद में कर लेंगे, इसका मतलब तो वो तो चीटिंग कर रहा है ना, अपने को चीट कर रहा है। तो वो फिर भगवान देख रहे हैं ना, अच्छा इसका मतलब हृदय में नहीं चाहते ना। अगर आप रियली समझ रहे हो कि हाँ मैंने क्या किया, तो आज से शुरू करना चाहिए, अरे लेट हो गया ऑलरेडी। और जो प्लानिंग कर रहा है ठीक है, और थोड़ा एंजॉय कर लिया, दैट मीन्स ही इज ट्राइंग टू चीट कृष्ण। सो देन वो जो शरणागति के विरुद्ध हो गया अपने आप में ये विचार ही, तो फिर वो शरणागति कैसे देगा? जब तक ऐसा विचार रहेगा तब तक ऐसे शरणागति नहीं आ सकती। अगर पूर्ण शरणागति हो गई तो पाप करने का एटीट्यूड सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो पूर्ण शरणागत हो गया उसका तो सभी भगवान उसका सब पूर्ण तो शुद्ध कर देते हैं। अगर पूर्ण शरणागत हो गया तो वो एटीट्यूड कहाँ रहेंगे, सब खत्म हो जाएगा। एनीथिंग एल्स? भगवान का गुणगान करना मतलब भगवान से अटैचमेंट, तभी तो आप भगवान का गुणगान करेंगे। भगवान के अच्छा विग्रह की सेवा करना भगवान से अटैचमेंट, तभी तो आप भगवान की सेवा करेंगे। अगर आपको डेटिव वर्शिप कर रहे हैं लेकिन अटैचमेंट भगवान प्रसन्न हो इससे नहीं है, कुछ मेंटल प्लेटफॉर्म पर, हाँ मैंने आज कितना सुंदर श्रृंगार किया लोग देखेंगे, या मृदंग बजा रहे हैं, तो अटैचमेंट मृदंग से भगवान सेवित हो उससे नहीं है। वो मृदंग से मेरा या तो मेंटल एन्जॉयमेंट, बड़ा अच्छा आवाज़ आ रही है और कानों को बड़ा मधुर लग रहा है, या तो लोग प्रशंसा कर, तो वो अटैचमेंट कृष्ण से अटैचमेंट नहीं हुआ ना, वो तो मृदंग, वो तो डेटी वर्शिप से अटैचमेंट नहीं हुआ, वो तो रियल सेंस में मृदंग भगवान के गुणगान से अटैचमेंट नहीं हुआ, तो ऐसा लग रहा है, पर अटैचमेंट तो अल्टीमेटली आपको अपने इंद्रिय भोग से ही रह गया ना। भगवान के गुणगान से अटैचमेंट मतलब जिसमें कि अटैचमेंट है कि भगवान प्रसन्न हो, उसको भगवान के गुणगान से अटैचमेंट कहेंगे। डेटी वर्शिप मतलब डेटी वर्शिप करना जिससे कि भगवान प्रसन्न हो, उसको डेटी वर्शिप कहेंगे। अदरवाइज वो तो अपने ही इंद्रिय भोग से अटैचमेंट है। इनडायरेक्टली हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली तो मुख्य रूप से तो हमारे इंद्रिय भोग में अटैचमेंट है ना।
How to reconcile between individual identification of self and also being humble menial?
अगर कैसे reconcile करें कि हम soul हैं और हम विनम्र भी हैं, तो reconcile सीधा सीधा है। soul मतलब तुच्छ भगवान का सेवक, तो humility तो स्वाभाविक रूप से उससे आएगी अगर हम समझ रहे हैं कि हम आत्मा हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि हम शरीर हैं तो उससे अहंकार आएगा, मैं शरीर हूं यानी मैं भोगता हूं, वो मिथ्या अहंकार है। लेकिन ह्यूमिलिटी तो स्वाभाविक रूप से आती है अगर हम समझते हैं कि हम आत्मा है। ऐसे लोगों की को कैसे प्रचार किया जाता है जो लोग दुष्ट की तिना है, जिनका भगवान मंडन कर रहे हैं, जो भगवान की तरफ कभी आकर्षित नहीं होते हैं, तो जो लोग आसुरी भाव में जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, तो उनकी प्रीचिंग है भगवान उनको नरक भेजते हैं डंडे मार मार के, उनका वो प्रीचिंग है उनका, उनका और कोई उपाय नहीं है, भगवान अपने से दूर करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को हमको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम उनके लिए प्रीचिंग क्या है कि कम से कम वो और अपराध नहीं करें। तो अगर हम उनको प्रीच करने जाएंगे, जो लोग ने ठान लिया है कि हमें हम भगवान के दुश्मन हैं, तो वो हम प्रीच करते हैं तो वो और अधिक भगवान का अपराध करते हैं। तो इसलिए उनके लिए प्रीचिंग क्या है कि कम से कम और अपराध मत करो। प्रीचिंग का मतलब क्या होता है, जिस स्तर पर भी हुए हैं उस स्तर से कम उनको एक स्तर आगे ले, आगे नहीं रास्ते तो कम से कम बहुत पीछे नहीं धके। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए प्रीचिंग क्या पॉसिबल, केवल क्या लेवल पे पॉसिबल है कि कम से कम उनको और पीछे मत जाने में आप मददगार मत होइए, जितना दूर है उतने दूर कम से कम रहे। तो इसलिए उनके लिए प्रीचिंग है कि जस्ट डोंट प्रीच टू देम, प्रे टू कृष्णा फॉर देम, जो ऐसे आसुरी हैं जिन्होंने ठान लिया है, विचार किया है, सुना है भगवान के विषय में, सुन करके भी विचार किया है कि भगवान कोई नहीं है, हमें उनके विपरीत जाना है, ऐसे लोगों की बात हो। लेकिन जो ऐसे लोग हैं, मूड हैं, इंद्रिय भोग में लिप्त हैं, लेकिन भगवान के प्रति विशेष रूप से ईर्ष्या नहीं है, तो ऐसे लोगों को धीरे धीरे प्रसाद के द्वारा उनके कामों में हरे कृष्ण कीर्तन के द्वारा या ये भगवत संदेश सुना करके कि तुम मूर्ख हो, भगवान तुम्हारा क्या परिणाम होगा, इस प्रकार से बोल करके उनकी जो ये अशुद्धियाँ हैं उनकी जो उसको हम हटा सकते हैं। तो साधु के जो वचन हैं भगवत संदेश के वचन, उस व्यक्ति के उपयुक्त, वो उसकी अज्ञानता को काटते हैं और इसलिए इस प्रकार से हेल्प होती है उसकी। हाँ, तो दोष नहीं है ना क्या ऐसा पूछना सुनाने वाले का कि वो नहीं सुनना चाहते, तो मैं हम क्या करें? हाँ, अंततः कोई भक्त बनेगा इसकी गारंटी तो हम नहीं ले सकते, लेकिन हमने अपना कार्य किया कि नहीं किया वो भगवान देता है, हमने अपना कर्तव्य निभाया कि नहीं निभाया वो भगवान देता है। तो इसलिए हमें अपना कर्तव्य सही प्रकार से करना चाहिए, जो हमारा कर्तव्य पिता के प्रति या पिता का पुत्र के प्रति। अब ऐसा करने पर भी बहुत सारे कारण ऐसे हो सकते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद थे तो उनके पुत्र भी शुद्ध भक्ति को नहीं अपनाए। श्रील प्रभुपाद जो पूरे संसार में इतने लोगों को शुद्ध भक्त बनाए, लेकिन उनके पुत्र नहीं अपनाए, तो क्या कारण रहा होगा? हम नहीं कह सकते क्या कारण रहा होगा, लेकिन डेफिनेटली श्री प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त की कोई कमी नहीं रही हो सकती है। तो एक और कारण भी होता है, शुद्ध भक्तों के परिवार में अभक्त भी जन्म लेते हैं। भगवान के कुल में यादव ऐसे लोग, इस प्रकार से भी होता है कि वो लोग ही आपस में ऐसा कार्य करते हैं कि आपस में लड़ते झगड़ते हैं। वो ये स्थापित करने के लिए भगवान कई बार ऐसा करते हैं कि जो दिव्य ज्ञान है वो कुल के ऊपर आधारित नहीं होता है, सेमिनिकल ट्रांसमिशन पर आधारित नहीं होता है, वो जनजात नहीं है। ये स्थापित करने के लिए भगवान कई बार वंश के अंदर जो लोग आ रहे हैं उनको विपरीत अवस्था में का चेतना वाले लोग को लेके आते हैं कि केवल जनजात नहीं है, कोई भी व्यक्ति अधिकारी है यदि वो तैयार है सुनने के लिए तो उसको वो ज्ञान मिल सकता है। ऐसा नहीं कि अगर किसी के पिता हैं तो पुत्र को आएगा तभी आएगा, और कोई तरीका नहीं है। ये चीज स्थापित करने के लिए भगवान कई बार आचार्यों के कुल में ऐसे लोगों को भी जन्म देते हैं जो इनके विपरीत, जो बिल्कुल जो भक्त नहीं होते। जैसे कि भगवान ने भी जब अपने यदुवंश को खत्म किया तो भगवान ने ऐसा, ये यदु जाएंगे शराब पियेंगे आपस में एक दूसरे को मारेंगे, तो ये स्थापित करने के भगवान के वंश में आने पर भी ऐसा हो सकता है, ऐसे लोग आ सकते हैं। सो ये इस प्रकार से भी कई बार होता है।
शुरुआत में जब प्रचार में जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो कि इग्नोरेंस की वजह से सुनते नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो इग्नोरेंस की वजह से नहीं सुनते, तो ये चार प्रकार के लोगों में तो
वो हम तुरंत नहीं समझ सकते हैं, वो थोड़ा समय लगने पर ही समझ में आएगा। अगर आप उनको धीरे धीरे प्रचार करने का प्रयास करेंगे तो फिर धीरे धीरे आप समझ सकते हैं कि मतलब चार में से तो कोई है ही, तभी तो वो सुन नहीं रहे। अभी चार में से वो हैं लेकिन इसका मतलब नहीं कि चार लोग जो हैं अप्रचार नहीं है, मतलब इनको प्रचार नहीं हो सकता, उसका ये अर्थ नहीं है। हाँ हाँ, तो इसलिए हमें उनको प्रचार करके देखना है कि वो कौन सी कैटेगरी में है। अगर वो लोग इग्नोरेंस में है, बस इंद्रिय भोग में लिप्त, तो उनको ज्ञान नहीं था, लेकिन वो भगवान के प्रति ईर्ष्यालु नहीं है, यानी ईर्ष्यालु मतलब उन्होंने सुना है, विचार किया है, कि भगवान के पास जाना है, भगवान है नहीं है, विचार करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि नहीं कोई भगवान भगवान नहीं है, दैट मीन्स इस दृढ़ रूप से वो असुर है, अच्छे से खूब विचार करके और खूब उनके विरुद्ध प्रचार कर रहा है, उसके उसको प्रचार नहीं करना है। हाँ या ऐसे इतने बहुत लोग नहीं होते हैं जो कि आउटराइट जिन्होंने विचार कर करा करके निर्णय लिया है कोई भगवान नहीं, ऐसे लोग हैं जैसे रिचर्ड डॉकिंस जिन्होंने बहुत अच्छे से सब पूरा विचार कर करा के एस्टैब्लिश किया, अच्छे समझा कोई भगवान नहीं है और मुझे भी सबको बताना है कि कोई भगवान नहीं है, ऐसे वो इस कैटेगरी में आएंगे। या मायावादी लोग जिन्होंने खूब भगवान का कोई रूप नहीं है, शास्त्र को पढ़ लिया है, सब जान लिया है, एक समाजी लोग है ना, असामाजिक, तो विचार करके पूरा निर्णय लिया है कोई भगवान का रूप नहीं है, वो लोग इस कैटेगरी में आएंगे। लेकिन ज्यादातर लोग इस कैटेगरी ऐसी कैटेगरी में नहीं जिनको प्रचार भी नहीं करना चाहिए, ज्यादातर लोग तो इस कैटेगरी में जिनको प्रचार करने से उनका कुछ लाभ होगा, कुछ आगे आएंगे और भक्त बनेंगे।
कभी कभी ऐसा होता है हम प्रचार करें और उनके दिमाग में वो ऑलरेडी पहले जैसे मूर्ख या नाराज ऐसे लोग थे उनके दिमाग में वापस से क्लिक करे हमारे प्रचार करने से,
क्या क्लिक करे
कि नहीं भगवान तो है ही नहीं, ये लोग फालतू के प्रचार गलत प्रचार कर रहे हैं,
तो क्लिक नहीं, इसका मतलब उसके हृदय के अंदर वो आसुरी भाव है, क्लिक तभी करता है जब अंदर बीज है, बिना बीज के कुछ क्लिक नहीं करता है, बिल्कुल जी आकस्मिक नहीं होती है।
पहले नहीं सोच रहे थे कि अरे सब कुछ है भगवान, जब हम कॉन्टेक्ट में गए तो उनके दिमाग में
नहीं कोई भी जीव जो जन्म लेता है वो प्लेन स्लेट लेके नहीं होता है, वो सबके अंदर वो श्रद्धा के अलग अलग विभाग हैं, वो साथ में जन्म के साथ में आते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले उनके कोई विचार नहीं था, वो व्यक्त नहीं था, अव्यक्त रूप में अंदर था, लेकिन उनकी धारणा तो वो थी उसी प्रकार से। ओके
कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी पर प्रचार करने जाते हैं सामने वाले वो मायावादी हो या वो कोई भी, तो कभी कभी इस तरह से प्रचार करता है कि उसे बातें बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है, इस तरह से लोगों को समझाता है भले वो गलत हो, कभी कभी डगमगा जाने की स्थिति हो जाती है कि हम उससे प्रभावित हो, तो ऐसी कंडीशन में
तो इसलिए हमें सुदृढ़ बनना है प्रचारक को, कि हमें और अधिक हमारी श्रद्धा बलिष्ठ होनी चाहिए, और जितनी हमारी श्रद्धा है जितनी हमारी बलिष्ठता है उसी के अनुसार हमें ऐसे ही लोगों को प्रचार करना चाहिए। यदि हम अपने अधिकार के अनुसार हमें प्रचार करना चाहिए, तो ऐसे जो लोग हैं जिनको जो बहुत अधिक बलिष्ठ हैं आसुरी प्रवृत्ति में, जैसे कोई मायावादी है बहुत स्ट्रांग जिन्होंने सब जगह मायावाद का प्रचार करते हैं, तो ऐसा नहीं कि अभी आरंभिक कोई भक्त है तो उनको जाकर के हम उनको जाके करना चाहिए कि ठीक है आ जाओ हम आपसे आपको प्रचार करेंगे, तो क्योंकि सामने जो प्रतिद्वंदी है वो बहुत अधिक बलिष्ठ है ना, तो इसलिए हम उनको छोड़ दें, तो जो उनको जैसे रामानुजाचार्य ऐसे महान महान आचार्य वो कोई भी हो सबको हरा सकते हैं, तो उसके लिए अपने अपनी अधिकार के अनुसार फिर हमें बचा दें। यदि मैं ऐसा कोई व्यक्ति है लग रहा है कि उसको शास्त्रों का बहुत अधिक ज्ञान है, मायावादी है, शास्त्रों का बहुत अधिक ज्ञान है, अभी हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, हमें उसका एसेंस पता है लेकिन हमें उसकी जो डिटेल्स हैं कहाँ पर किस लॉजिक सब क्या किस तर्क का क्या उत्तर होगा वो हमें अभी नहीं पता है, हम शास्त्र में इतने पारंगत नहीं हुए हैं, तो फिर हम ऐसे लोग जा करके उनसे नहीं मुठभेड़ करें, इसका अर्थ यह नहीं कि हम उनसे हार रहे हैं लेकिन हम अभी उसके लिए तैयार नहीं है, उनके जो शास्त्र में जो गलत तर्क दे रहे हैं वो क्या गलती है वो हमने पढ़ा नहीं ना अभी, इसको हम उसके तैयार नहीं है, तो इसलिए हम उनको नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम एसेंस जानते हैं लेकिन हम उसको कैसे उसका जो तर्क है वो क्यों गलत है वो हम उत्तर नहीं दे पा रहे, दैट इज पॉसिबल, वो हमारा अधिकार नहीं है, तो इसलिए हम जो हमारे अधिकार के अंदर आते हैं उनको करें।
One question. As you mentioned, that Krishna puts us through difficult tests, but if we fail to surrender and serve in difficult situation, then what will Krishna do to rectify that situation?
अगर आप फेल हो गए तो फिर उसके अनुसार आपको परिणाम मिलेगा मिलेगा, क्योंकि आप फेल हुए मतलब आप हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तभी हम फेल हो रहे हैं। पास होने का मतलब उसका सदुपयोग कर रहे हैं तो उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अगर फेल हुए तो फिर हम भगवान की तरफ जो जाने का रास्ता है उसमें इतने पीछे चले जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। और भगवान तो हमेशा से हमको बोल ही रहे हैं, भगवान तो ये शास्त्र ज्ञान दे रहे हैं, तो फेल हो गए हैं तो फिर से और आगे दोबारा तैयारी कीजिए, दोबारा शास्त्र को और अच्छे से पढ़िए समझिए और आगे चलिए, सत्संग करते रहिए। फेल होने का अर्थ नहीं है कि हमेशा हमेशा के लिए अभी कोई होप नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान ने हमेशा से चाहे कितने भी फेल, हम सब ऑलरेडी फेल ही हैं, ऑलरेडी हैव कम डाउन, तो इसलिए कभी हताशा की जरूरत नहीं है। अगर हम फेल भी हुए हैं तो और उठना चाहिए, फिर आगे चल के दोबारा से परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रयास करना चाहिए। भगवान कई कई जन्म देंगे, जन्म तो आगे मिलते जाएंगे बाबा, लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि ये परीक्षा में फेल नहीं हो ये मनुष्य, क्योंकि उसके बाद दोबारा परीक्षा का टाइम कम मिलेगा, वो बहुत लंबा समय है, अनिश्चितता है, इसलिए वी शुड ट्राई दिस लाइफ इटसेल्फ द बेस्ट पॉसिबल। श्री प्रभुपाद की जय।